पीछे जाए बोला أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قالت إحداهما يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. Can go to the ayat number 26. Forward. وقالت إحداهما يا أبتي استأجره قالت إحداهما يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. We are discussing about the story of Hazrat Musa alayhi salatu wassalam with the help of the chapter Qasas. In this chapter Allah has mentioned the various sections of the story of Hazrat Musa alayhi salatu wassalam, that Hazrat Musa has started his migration from Egypt to Madain. He reached to the Madain city where Hazrat Shoaib was there. It is a will of Allah subhanahu wa ta'ala that Hazrat Musa can reach to the house, in the house that the house is known as the house of Prophet and house of Messenger. What is the reason behind that? Last night we explained to you all that the reason behind that is that Hazrat Musa had to reach that house and get some experience from Hazrat Shoaib alayhi salatu wassalam. This is a message to all believers and all those who are following the message of Allah subhanahu wa ta'ala, that before any planning, before getting any experience from your life or from the elder ones, those who are in your society, you can't be reached to a revolution. For the revolution, there should be a certain plan and certain things should be there, that is known as tadbir. That is tadbir, we have to follow that tadbir step by step to reach to the goal. That is the aim of Allah subhanahu wa ta'ala here, the will of Allah subhanahu wa ta'ala towards the story of Hazrat Musa alayhi salatu wassalam. He reached to the house of Hazrat Shoaib alayhi salatu wassalam, though this house is not a big house for Hazrat Musa alayhi salatu wassalam. He stayed in the castle of Pharaoh in the Egypt, but he reached to a house, the full of mud is there, animals are there, sheep are there. He reached to that house, but this house is, when we look with the eyes of materialistic life, this house is very small and full of mud and animals. But when we look see this house by our spiritual eyes, this house is full of light and spirituality, the light of spirituality of Messenger Hazrat Shoaib alayhi salatu wassalam. He reached to that house, one of the daughter of Hazrat Shoaib alayhi salam. Here last night we explained that the word istihya is there in between Hazrat Musa and the daughters of Hazrat Shoaib. The word istihya means chastity, modesty. The girls can go out of their house to for work. That istihya should be there in between their job and their personality. That's the word has been Allah been used in Quran. Our scholars has given the answer to all the women, those who are asking continuously, they are asking whether there is a permission for us to go out of our house, to work for the work, to work in industry or factory, any office. The Allah has mentioned one word, that if you can control yourself, you can save your modesty or chastity, you can go for the work. That word, word has been used by Allah subhanahu wa ta'ala. Here, how a girl can speak in front of Namahiram? How many words can she speak? What is the tune should be there? Allah has mentioned in this chapter behind these verses of Quran too. We have to imagine those things when you go to the commentary and the translation of Quran. Khalat ihdahuma ya abati istajarhu inna khayra man istajarta al-qawiyyun. I mean, to one of the two girls of Hazrat Shuaib, he said to his father that this man is very good man, looking very good man. We can hire him as a helper at our home too, because he is alone in this Madayan city, no one is here. Especially our one of the scholars has mentioned there that their mother-in-law is not there. Hazrat Musa is alone in our city, we can hire him in our home. He can work, he can support us to get the water to our flocks, to feed the animals. He is the best man for us, we can hire him for ourselves. The two attributes are mentioned here for Hazrat Musa alayhi salatu wasalam. This is the great sign and the intellect of that girl of Hazrat Shuaib alayhi salatu wasalam. She has said two words, one is al-qawi and other one is al-amin. Qawi means powerful, he is a strong man, and other one is trustworthy. For any administration, for any work we have to hand that work to the others, these two attributes should be there. Whether he is an alim, whether he is a scholar, or whether he is an administrator of his institution, he should have two attributes in his life. One is al-qawi and other one is al-amin. Al-qawi, he should be a strong man, mentally strong, bodily strong, and also a trustworthy. That is amin, as mentioned. Power and purity. Power and purity should be there for any administrator, those who are going to take some job of the community or work for the community. These two attributes are mentioned by the daughter of Hazrat Shuaib alayhi salatu wasalam. How she can understand, she has understand that he is a qawi man, powerful man. We have gone through the story of that help of Hazrat Musa alayhi salatu wasalam, that he lifted that heavy bucket of water and he helped the two girls of the Shuaib. They thought that this man is very heavy man, powerful man, bodily he is strong, he can help us too in future too. This is the one attribute that they have mentioned in Quran, that is he is qawi and powerful. We have mentioned in the last session that for a leader, for a administrator, shuja'at is also necessary. The power, the body strength is also necessary for a leader or for a administrator. Then another question will come in our mind, how she has using this attribute for Hazrat Musa, he is also Amin. What is the meaning of Amin here? Because we did not see any, she didn't know about the life of Hazrat Musa alayhi salatu wasalam. How Musa was there in the castle of Pharaoh, how Musa was there in the Egypt with his friends and his family. She didn't know anything about Hazrat Musa alayhi salatu wasalam. Still she is using the word, he is Amin, trustworthy, he is a pure man. According to our commentators, when that girl of Hazrat Shuaib, daughter of Hazrat Shuaib alayhi salatu wasalam, invited Hazrat Musa alayhi salatu wasalam to her house, at that time, the daughter of Hazrat Shuaib moving forward of in front of Hazrat Musa alayhi salatu wasalam to guide Hazrat Musa alayhi salatu wasalam towards her house. She is going forward and Hazrat Musa following her. At that time Hazrat Musa said to the daughter that we are prophets. We are connected to the family of prophets. We are connected to the family of messengers, that we are not have permitted to walk behind the girl or behind the woman, because you are non-mahram to me. It is better I will walk front, you walk behind me and guide me from my behind. That's the story, the link of the story that daughter has understand, that daughter of Shuaib, this man is not a wrongdoer. This man is known as trustworthy. Not only trustworthy, whenever we using that Amin, our intention, our mind goes towards financial department. Or he is Amin means he will keep that those money safe in our home and he can work in the society. No, according to Quran, the Amin means the two type of amanat is there. One is amanat connected to our finance department, and another one amanat means his character is very good. He can't move. He can't cross the limit that Allah has given, asked from him to stay in the limit. That's what Hazrat Musa has mentioned in this story, that Allah has mentioned that Hazrat Musa has shown his character to the daughter of Hazrat Shoaib. From that incident, the daughter of Shoaib understand that this man is not only bodily strong, powerful, and also this man is Amin. The one of the attributes of our all messengers and prophets. That Amin, the Amanatdar should be there, the trustworthy should be there in their life. Same word has been used by Hazrat Yusuf alayhi salatu wasalam in the court of the king, that you can appoint me as a finance minister. Why? Because I am Amin. You can trust on me. When Allah used, when they discuss about the finance, the same word has been used. When Allah discuss about the morality and the character, the same word has been used for the messengers and prophets. That's from this, that girl, the daughter of the Shoaib, understand that this man is powerful, bodily powerful, and also trustworthy. We can trust on him. So indirectly, we can understand that. What is the scene behind this verse of Quran? Indirectly, the daughter of Hazrat Shoaib giving an indication to Hazrat Shoaib that he is a good spouse for me. The selection of a spouse comes in between the discussion in between our commentators. It is the best time to select a spouse. So who is the best spouse for that girl? Who is having the two attributes in their life, powerful and trustworthy. Indirectly, she has given indication that Ayatullah Rasim Makarim Shirazi mentioned in this tafsir that our girls are having certain things in their mind. They have to set those things in front of their parents without hiding those things in their mind. The times comes of the selection of the spouse, they have to mention certain attributes or qualities of your spouse. To whom they are going to select, whether it is a Qawi or Amin, though their parents are responsible to select spouse for her, but still she is having authority in Islam. According to the verses of Quran, she can express her feelings, what kind of spouse she is going to be having in her life. That is Wal Qawi and Trashwati. Indication that she has given, but in beautiful sentence, without mentioning anything about her personal life, without mentioning anything. Here she has given some indication. What happened next, in next verse, please? Qala inni. Oh, he was Hazrat Shoaib. Hazrat Shoaib was the messenger. He was the prophet. He can understand what her will is, what she wants to say. What is the intention behind that verse of Quran, Qawiyul Amin? He was messenger, he is a prophet, he can understand very easily what is the desire of that girl. Qala inni, directly Hazrat Shoaib has mentioned, inni urido an ankihaka ehda ibnatain. The word marriage come in between. The nikah, the word, the Arabic word for the marriage has been used in Quran is nikah. That why we are using that sigha of ankahto and qabilto. Ankahto will come from this word unkehaka. Unkehaka is basically from the word ankahto. From the girl's side, the ankahto will be from the woman's side and qabilto from the man's side. The marriage will be start from the acceptance of a woman. Then the man should give the answer, I will agree what you are telling, what you are asking from me. Qala inni urido unkihaka ehda ibnatain. Why am I having two daughters at my home? I am ready to marry one of them to you, to Hazrat Musa alayhi salatu wasalam. What a good time Hazrat Musa is having in the Madayan. He ran away from the Egypt. He has migrated to Madayan and he worked hard there. He worked more than 8 days. He faced a lot of difficulties. When he reached to the Madayan, the doors of Rahmat has been opened for Hazrat Musa alayhi salatu. A lot of our youth, they are in search of
their spouse. They are ready to marry, but they are not getting any girl. But Hazrat Musa went to the Madayan. Directly Hazrat Shuaib is offering to him, I am ready to marry one of my daughter to you. This is the best time for Hazrat Musa and best time for Hazrat Musa to accept this offer from Hazrat Shuaib, the daughter of a prophet and messenger. قال اني اريد ان كحك احد ابنتين هاتين الا ان تاجرني here. One of the discussion is there without any mahar, without any dower, we are not going to marry. I am not ready to give my daughter to you. Something should be there in your hand. The dowry system is not there in Islam. You have to pay cash. The mahar should be there. There is no credit in mahar too. What can Hazrat Musa pay to Hazrat Shuaib alayhi salatu? Nothing was there. He was empty handed. Now he reached to the home. What can he do? Hazrat Shuaib has given him opportunity. You can marry one of my daughter, but you have to work in my home for 8 years or 10 years. The word Hajj has been used before Islam. Samaniya Hijaj. Samaniya means 8. Hijaj means the plural of Hajj. Samaniya Hijaj or Ashra. Ashra means 10. Normally we will use that Ashra in the when we discuss about the Muharram. Ashra means 10. 8 Hajj or 10 Hajj. Every year Hajj will be there. Instead of using year, Hazrat Shuaib has been used the word Hajj. To remember Hazrat Musa too, there is a Hajj also there in our worships. In our religion, Hajj is also there. Here Ayatollah Qirati has mentioned that whenever you want to give the time or you want to mention something to your friends, your relatives, use the Islamic words for him. Don't use time or place for them. Oh, we are going to meet with you where? At what time? Where or what time will be important. Oh, we can meet each other outside the Momin Center. A nearby Momin Center. When? After Salatul Isha. After Namazi Isha. Hope you can use at 8 p.m. But instead of using 8 p.m., we can use after Salatul Isha. What will be happen? If I am not aware of the Namazi Isha, I will remember Namazi Isha is there. If my friend is not aware of Namazi Isha, let them read Namazi Isha. This is the best thing that we can utilize in our life. The same thing has been Hazrat Shuaib alayhi salatu wasalam. Hajj is also there in our religion. You have to remember Hajj. Instead of using year, Hazrat Shuaib is using the word Hajj. Samaniya Hijaj or 10. It is a choice between you. Whether you work for 8 years or 10 years. Hazrat Musa, وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ. This is not a burden on you. 8 years must be there. The mahar of 8, you have to work 8 years. In between 8 and 10, you are the choice. I didn't want to put any burden or any, I am not going to hard time to you. Satajiduni inshallah min as-salihin. What is the meaning of this? Satajiduni, you will find me to be one of the righteous. What is the meaning of this righteous? He had to work 8 years at the home of the Shuaib, Hazrat Shuaib, to marry one of her daughter, and then he is mentioning that you will find me the one of the Salihin. Oh, what is the meaning of the Salihin here? Oh, Salihin means you have to give your daughter without mahar. Oh, everyone accept like the same thing. Oh, if Hazrat Shuaib is giving her daughter without any mahar or a large mahar, that the Salihin word will come in between. But what is the mahar? Hazrat Musa has to work nearly eight years in the house of Hazrat Shuaib to marry her daughter. Oh, where is the meaning of Salihin here? What is the meaning of Salihin? Here our scholars have mentioned that there is no, from Hazrat Shuaib, there is no way for Hazrat Musa to work 8 years at his home. What is the reason behind that? It is a crash course for Hazrat Musa. At least he can stay at the house of Hazrat Shuaib to complete his degree of prophethood, to complete the degree of messengership at the house of Hazrat Shuaib alayhi salatu wasalam. This is a time to hold Hazrat Musa at his own home, home of Hazrat Shuaib, home of the prophet, to gain experience for the upcoming revolution. to gain a lot of experience. You know, when you stay outside the city, the outside the country, we can imagine what is going on in our country. Most of us, one of our friends, those who come from the Karachi, I ask what is going on in Karachi. He didn't know about what is going on in Karachi, because in one street something is happening, in another street he don't know what is going on there. When we come out from the Karachi, we can understand what is going on there. Now we can understand what is going on in Iraq. Most of the Zayarin has gone there in Karbala and Najaf. They didn't know about what is going on in Mosul. Because in the city itself and the country itself, most of the news will be censored. They are not bringing all those news for the city people or the country people. But those who are staying outside the country, outside the study, they can understand what is going on in the city or in the country. That Hazrat Musa, when he was in the Egypt, he didn't know what is going on in the Egypt. Simply they started killing at the time of Hazrat Musa, when he was in the castle of Pharaoh, nothing was there. When he come to the Madain, now he's slowly he's understanding what was going on in Egypt. What is going on in Egypt? What is happening there? Now this is the time to gain the lot of experience, to get some advices from Hazrat Shoaib, suggestions from Hazrat Shoaib. Best time to complete his degree in the house of Hazrat Shoaib alayhi salatu. 8 years or 10 years. Agha Qirati, one of the commentators of Quran, mentioned that those who are passing 2 years or 3 years in Hauza and Dini religious schools or in some other universities, they are saying that we have become alim or we have gained a lot of experience. According to the Quran, you must have to stay in university or a madrasa at least 8 years or 10 years. One of the thing that he has grasped from that. So Hazrat Musa is staying at least 8 years or 10 years for what? To pay the mahar or to gain the experience or to learn from Hazrat Shoaib alayhi salatu wasalam. Nearly he is ready to learn from a lot of things from Hazrat Shoaib. At least he had to stay 8 years or 10 years. When we go through the universities, the time of for the completion of the university or the degree they have fixed. When you go through those years, at least we can imagine those years are nearly 8 years or 10 years. After 10th standard, we have to pass at least 8 years or 10 years to reach certain degree. Even in Qom, you have to pass nearly stay at 8 years to reach to the Darse Kharij, to reach to the preface of the Ijtihad. For this one of the messages that he has gained from this chapter, this verse of Quran. Satajadani inshallah min as-salihin. Hazrat Shoaib kept his proposal in front of Hazrat Musa, but choice is the choice of Hazrat Musa. You are alone here without my daughter will be stay with you without disturbance of mother-in-law. You are alone in our city. You are ready to pay the mahar or not? If you are ready to pay the mahar, choice is yours. Satajadani inshallah min as-sabirin. Next verse, please. Zalika baini wa bainak. Then Hazrat Musa accepted the proposal of Hazrat Shoaib alayhi salatu. I am going to accept this marriage proposal, marriage of your daughter, and I am ready to pay the mahar too, but it should be my choice, 8 years or 10 years. I will see. If I will complete the 8 years. If time is there, if I need it, I will complete 10 years, فَلَا أُدْوَانَ عَلَيَّ. There is no injustice on me. There is no burden on me. It is my choice. وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولَ وَكِيلٌ. Who is the witness in between these two? Who is the witness? At that time, we have to remember Allah subhanahu wa ta'ala. If Allah is the witness, no one can break their promises. No one is ready to break their promises. We have to bring Allah in between. As when we are discussing about certain matters. Wallahu ala ma naqulu wakil. God is witness in between us. I am accepting your proposal. Hazrat Musa accepted the proposal of Hazrat Shoaib. He stayed in the house of Hazrat Shoaib alayhi salatu wasalam. What gift Hazrat Shoaib has given to Hazrat Musa? You know what is the marriage gift? The marriage was took place. Who are recited the seva? There is nothing was there. Hazrat Musa, Shoaib has given the proposal, Hazrat Musa has accepted. That's why that is mentioned in the verse of Quran. What is the gift Hazrat Shoaib has given to Hazrat Musa? What gift of marriage? Lot of jewelries, diamond ring, golden ring. What is the gift Hazrat Shoaib has given to Hazrat Musa? what is the message of Islam and where we stand in our communities. The gift that Hazrat Shoaib has given to Hazrat Musa, the stick that he had in his house from Hazrat Adam alayhi salatu wasalam. He asked Hazrat Musa to go and pick that stick, that is the inheritance that I got from Hazrat Adam alayhi salatu wasalam. That is known as Asa-e Musa. In the future, in the coming stories that we are going to learn, that stick will help Hazrat Musa a lot when he was in the desert and when he was trying to come back from Madain to Egypt. That is the same stick that is known as in the history, according to the verses of Quran, Asa-e Musa. When he throw that stick, he can make a place in the river or it will convert into a snake. That is called one of the miracles of Hazrat Musa alayhi salatu wasalam. The best gift that Hazrat Shoaib has given to Hazrat Musa alayhi salatu wasalam. Then here we can understand what is the reason behind the migration of Hazrat Musa from Egypt to Madain. To reach to certain position, a prophet can get the miras of other prophet. No one can handle those miras. Inheritance. A prophet itself, to get the prophet miras or inheritance, that power should be there. That eligibility should be there. Hazrat Musa gained that eligibility. He got the miras of Hazrat Shoaib alayhi salatu wasalam. Then the story moves forward. Here, our scholars have mentioned two things. I didn't want to go those things. One is the importance of work in Islam. That Hazrat Musa worked in the house of Hazrat Shoaib alayhi salatu wasalam for 8 years or 10 years, the importance of work in Islam. Allah asked his prophets and messengers to work. To work, especially those who are in young age, those are our youths, should be think about that. The work should be there in their life. Certain work should be there. Don't sit in front of laptops and computers and waste your time. आगे बुलाना है जी, मुझे बोल देते मैं खुद बुला लेता हूँ। सल्लल्लाहु मुहम्मद व आलिय मुहम्मद। तो नहीं, और आगे नहीं आएंगे, बस फिर हजरत मूसा का साथ चाहिए। सर मिलके सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। Yeah, in depth you can go, inshallah, tomorrow we'll try to explain this concept of Islam, the importance of work in Islam. And the second thing that we have to discuss is the importance of marriage in Islam. Both the things has been mentioned from our commentators in behind these two verses of Quran. The word ankeho has been used in this verse of Quran, and also the word Istajar and Ajar, Ujrat, Ajir has been used in this verse of Quran. That means the Islam has given lot of importance to work for every believer or every human being. They have to have in their life certain work for themselves or for community. Importance of work in Islam and also importance of marriage in Islam. The marriage was took place. Hazrat Musa married one of the daughter of Hazrat Shoaib. By name, the name has given, the name of the daughter is Safura. One is a Safura, the other name of the other daughter is Lawa. He has married to the Safura. Whenever our scholars are going to mention, they use this name in the supplication of the Nikah, Allahumma Alif Bainahuma, Ka Allafta Baina Musa wa Safura. The name of the wife of the Musa was Safura. They stayed together and she has helped Lord to Hazrat Musa alayhi salatu wasalam in on the way of Allah subhanahu wa ta'ala to reach to certain position that she has had. Both of them are come back to Egypt and work for the upliftment of community. Nikah hua, Hazrat Musa ka nikah kisne pada? To Hazrat Shoaib alayhi salatu wasalam maujood the wahan par. Baap ne apni beti ka nikah pada aur Hazrat Musa aur apni biwi ke saath khushhal 8 saal 10 saal zindagi guzarte rahe. Islam mein jahan bhi nikah ki guftagu aati hai, wahan nikah padne wala ka naam bhi zarur darmiyan mein aata hai. Pucha jata hai, bhai nikah kisne pada hai? Ab nikah padne wale ko log chunte hain. इंतखाब करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, एडवांस में ख़बर देते हैं और उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि भी आज हमारे बेटे का निकाह है, आज हमारी बेटी का निकाह है, आप पढ़िएगा, आप दुआ पढ़िएगा। इसलिए कि एक रस्म है मुसलमानों में, अगरचे किसी और के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इंसान खुद अरबी समझता हो, माँ बाप मौजूद हो, वो खुद निकाह पढ़ लेते हैं। यहाँ पर रुक कर एक जुमला कहूँ, जब मौलाना की ज़रूरत होती नहीं है वहाँ बुलाया जाता है, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ नहीं बुलाया जाता। निकाह पढ़ने में और हदीस किस्सा पढ़ने में वहाँ मौलाना होना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर जो भी अरबी पढ़ सकता है वो, अरबी जान सकता है वो, ज़रूरी है कि पढ़ सकता है। कहाँ मौलाना की ज़रूरत होती है? जहाँ पर लोगों को बुराइयों से बचाना हो, नहीं अज़ मुनकर करना हो, अमर बिल मारूफ करना, वहाँ ज़्यादा ज़रूरत होती है। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ याद ही नहीं किया जाता, जहाँ ज़रूरत नहीं होती है चार चार इन्विटेशन आते हैं, दूल्हा की तरफ से एक, दुल्हन की तरफ से एक। बहरहाल ये दुनिया का माहौल चला आ रहा है, तो निकाह के लिए बुलाया जाता है। तो हमारा सवाल मुसलमानों से यहाँ पर यही है कि जब निकाह के लिए इतनी अहमियत दी जाती है, कुरान ने इसकी अहमियत दी है, इसको सही अरबी में पढ़ना चाहिए, सही इंसान पढ़ना चाहिए, माना व मफहूम से आशना हो, लफ्ज़ों से लफ्ज़ों की जान पहचान रखता हो, वो इंसान निकाह पढ़े। तो हमारा सवाल मुसलमानों से यही है कि फिर बताइए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का निकाह किस जी। हम फजा ईमान साबित करने की कोशिश नहीं करें, यह ज़माना नहीं है कि हम आज भी हज़रत अबू तालिब का ईमान साबित करें। अल्लामा अकील गरवी के बकौल, अगर हम शुरू करें ईमान साबित करना तो इसका मतलब यह कि हम खुद अबू तालिब पर जुल्म कर रहे हैं। तो ईमान आज साबित करने की ज़रूरत नहीं, अब मौका यह है कि हम फजाइल बयान करें, हज़रत अबू तालिब की फजीलतों को बयान करें। ये फजीलतें क्या हैं? सबसे बड़ी फजीलत जो हमारे उलमाए कराम ने जिक्र की है वो ये कि आपने अक़्दे निकाह पढ़ा किसका? आखिरी नबी का। आखिरी नबी का अक़्दे निकाह पढ़ा, जो लफ्ज़, पूरी तवज्जो चाहता हूँ उस पर गौर कीजिएगा, जो लफ्ज़ आपने निकाह में इस्तेमाल किया, परवरदिगार आलम ने उस लफ्ज़ को कुरान का हिस्सा बना दिया। यह फजीलत है। यह कि इंसान की दो चीज़ें काउंट की जाती हैं, एक उसका कौल और एक उसका फेल, यानी एक उसकी ज़बान, लहजा, लफ्ज़ जो इस्तेमाल कर रहा है, और जो उसका अमल है। कौल और अमल दो इंसान की चीज़ें गिनी जाती हैं, हिसाब में लाई जाती हैं, वो कैसे बात कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। अगर बात और काम दोनों अलग अलग हों तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। काम, बात भी अच्छी हो और काम भी अच्छा हो, दोनों चीज़ें काउंट की जाती हैं, दोनों चीज़ें हिसाब की जाती हैं। देखिए हज़रत अबू तालिब की ज़िंदगी में आपने बात की, एक लफ्ज़ आपकी ज़बान से निकला, वो लफ्ज़ बताया कौन सा है? लफ्ज़ जो हज़रत अबू तालिब ने निकाह में इस्तेमाल किया, परवरदिगार आलम ने उसको कुरान का हिस्सा बना दिया। अल्हम्दु, सबसे पहला लफ्ज़ जो आपने निकाह में इस्तेमाल किया है वो अल्हम्दु। अल्लाह को ये लफ्ज़ इतना पसंद आया, परवरदिगार आलम ने पहले सूरे का हिस्सा बना दिया उस अल्हम्दु को। जब भी अल्हम्दु पढ़ना तो उस अजीम इंसान को याद करना जिसने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया खुतबे में। आज कोई भी खुतबा ऐसा नहीं है दुनिया का, चाहे वो निकाह का खुतबा हो या मजलिस का खुतबा हो, जो बग़ैर अलहम्द के शुरू होता हो। देखिए ये कौल इतना पाक और कौल इतना ताहिर के परवरदिगार आलम उसको कुरान का हिस्सा बना दे, और अमल इतना पाक के बचाए खुद परवान चढ़ाए अबू तालिब, और इतना पाक अमल हो जाए कि परवरदिगार आलम कहे अबू तालिब तुमने पनाह नहीं दी मोहम्मद को, हमने पनाह दी। अलम यजिद का यतीमन फआवा, ये एहसान याद दिला रहा है परवरदिगार आलम किसको? आखिरी नबी को। देखिए कौल वो उतना मोतबर जो उस कुरान का हिस्सा बने, अमल इतना मोतबर कि जिसके अमल को अल्लाह कहे ये तुम्हारा अमल नहीं है, ये मेरा। दो शख्सियतों के अमल को परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में अपना अमल कहा है, एक रसूल का अमल, दूसरे अबू तालिब का अमल। गौर कीजिएगा मकाम कितना बुलंद है। निस्बत हो जाना ही कमाल है, मंसूब हो जाना ही कमाल है, और उनके अमल को कहे अल्लाह मेरा अमल है। जब शबे हिजरत पैगंबर इस्लाम घर से बाहर निकले तो आपने कुछ कंकरियाँ फेंकी दुश्मन पर ताकि उनकी आँखों पर पर्दे पड़ जाए, ताकि वो रसूल को घर से निकलता हुआ ना देखें। कुछ कंकरियां पैगंबर इस्लाम ने फेंकी तो परवरदिगार आलम कुरान मजीद में कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ऐ रसूल, तुमने कंकरियां नहीं फेंकी, अगर तुमने भी फेंकी हैं तो वो अल्लाह ने फेंकी है, यानी तुम्हारा फेल गोया अल्लाह का फेल है। और दूसरा फेल जो हज़रत अबू तालिब का है कि परवान चढ़ाया, तकरीबन 40 साल पैगंबर इस्लाम के साथ रहे, तो आपके फेल को परवरदिगार आलम ने कहा ये अबू तालिब का फेल नहीं, ये दरहकीकत मेरा काम है। दो पैगाम है, एक अमल को इतना पाक करो कि अल्लाह तुम्हारे अमल को अपना अमल कहे और उसे मंसूब करें, कुरान मजीद का हिस्सा बना दें। अलम यजिद का यतीमन फआवा, तुम यतीम थे तो हमने पनाह दी। कैसे पनाह दी? हज़रत अबू तालिब के ज़रिए से पनाह दी। हज़रत अब्दुल मुतल्लिब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में अपने बच्चों को बुलाया, बच्चों को बुलाने के बाद आपने वसीयतें की कि मैं जा रहा हूँ इस दुनिया से, तो कौन है जो इस अब्दुल्ला के यतीम की परवरिश करे? गौर कीजिएगा, मैं इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आज हमारी ज़िम्मेदारी भी है कुछ यतीमों का ख्याल करें। ये हमारे अजदाद की, अहले बैत की सुन्नत और सीरत है, कभी भी उन्होंने यतीम के आंखों में आंसू आने नहीं दिया, कभी भी यतीम के आंखों में आंसू आने नहीं दिया है। हज़रत अब्दुल मुतल्लिब ने कहा कौन है जो इस बच्चे की, दो रिवायतें मुख्तलिफ हैं, कौन इस बच्चे की परवरिश करेगा, कौन कफालत करेगा? कफालत के लिए इंतखाब किया जाता था शख्सियतों का। एक रिवायत यह है कि अब्दुल मुतल्लिब ने मुस्तकीमन हज़रत अबू तालिब से कहा कि बेटा तुम इस बच्चे की कफालत करना, इस बच्चे का ख्याल करना। दूसरी रिवायत बड़ी खूबसूरत रिवायत है, दूसरी रिवायत यह है कि हज़रत अब्दुल मुतल्लिब के बच्चे बेटों ने कहा बाबा ये बच्चा बहुत ही चालाक है, बहुत ही अक्लमंद है, उसने हमारी ज़िंदगी को देखा है, हम सबको देखा है, आप खुद इस बच्चे को इख्तियार दीजिए कि वो खुद अपना सरपरस्त इंतखाब करे, खुद वो अपना कफील इंतखाब करे कि कौन वो किसकी परवरिश में जाना चाहता है, ताकि कोई जबर ना हो, कोई ज़बरदस्ती ना हो। हमारे पास सबके पास सहूलतें हैं, सबकी शख्सियतों को देख चुका है वो, उसको कौन सी शख्सियत पसंद है, किसके साये में वो ज़िंदगी गुजारना चाहता है। रिवायत कहती है कि पैगंबर इस्लाम करीब गए और आगोश हज़रत अबू तालिब में बैठ गए, तब अब्दुल मुतल्लिब ने, हज़रत अब्दुल मुतल्लिब ने फरमाया हाँ मेरी निगाहों में भी यही शख्सियत थी, ये बच्चे का भी इंतखाब है, इंतखाब आगोश जिसे पैगंबर इस्लाम ने इंतखाब किया हज़रत अबू तालिब के आगोश को। यह खूबसूरत जुमला है किसी आलिम दीन का, अल्लाह के मुंतखब बंदे के इंतखाब को अबू तालिब कहते हैं। मुस्तफ़ा यानी अल्लाह का मुंतखब बंदा, अल्लाह के मुंतखब बंदे ने जिसने अपनी किफालत के लिए इंतखाब किया जिस शख्सियत को, उस शख्सियत का नाम है अबू तालिब। ये बड़ी अजीम शख्सियत है, इसके काम को अल्लाह ने कुरान मजीद में मंसूब किया और ना सिर्फ मंसूब किया, देखिए मैं यहां तक आपको बात कह दूं, अलम यजिद का यतीमन फआवा, तुमने यतीम की परवरिश किया अबू तालिब, तुम्हारे काम को हम अपना काम कह रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो एहसान तुम पर अबू तालिब ने किया है उसका बदला ना चुकाओ। उसका बदला क्या है? कुरान मजीद की आयतें याद हैं आप हजरात को, कोई जवाब दे सकता है? अलम यजीद का यतीमन फआवा, हमने तुम्हें यतीम पाया तो परवरिश की अबू तालिब के जरिए से। उस परवरिश का मतलब यह नहीं कि तुम भूल जाओ, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए अगर कोई कह सकता है आया कुरान? उसी सूरे में दो तीन आयतों के बाद परवरदिगार आलम बिल्कुल सही, वह अम्मल यतीम फला तकहर, तुम्हें परवरिश दी तुम्हारे आंखों में आंसू आने नहीं दिए हजरत अबू तालिब ने, अय मोहम्मद तुम भी किसी यतीम के आंखों में आंसू आने ना देना। ये पैगाम कुरान है, कितनी खूबसूरत जो है अल्लाह ने एक ही सूरे में दो तीन आयतों के बाद, तुम यतीम थे अबू तालिब ने परवरिश की, अय मोहम्मद तुम भी किसी यतीम को झिड़काना नहीं। फअम्मल यतीम फला तकहर, उसके बाद वो अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह की नेमतों को याद करो। सबसे बड़ी नेमत पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी में हज़रत अबू तालिब का वजूद है, इसलिए हर जगह हर मौके पर पैगंबर इस्लाम अबू तालिब को याद किया करते थे। जब तक हज़रत अबू तालिब ज़िंदा थे आपके साए में थे, सरपरस्ती में थे। जब हज़रत अबू तालिब इस दुनिया से गए हिजरत के 3 साल पहले या 4 साल पहले, एक बेहतरीन साया आपके सर से गुजर गया, अजीम तरीन साया, ये कोई इंसान बयान नहीं कर सकता जो 40 साल साथ रहे और वो शख्सियत सर से गुजर जाए। 84 साल की उम्र में हज़रत अबू तालिब इस दुनिया से गए, उसी साल को पैगंबर इस्लाम ने नाम दिया है आमुल हुज़्न, ये गम का साल है, ये दुख का साल है। क्यों? एक अजीम शख्सियत इस दुनिया से चली गई है, हमेशा याद किया है, हमेशा हर मकाम पर याद किया। और एहसान जो हजरत अबू तालिब का था वो कभी खत्म होने वाला नहीं था, इसलिए कि आपके आगोश में एक स्कॉलर का जुमला है, बड़ा खूबसूरत जुमला है, कंपेयर किया है उसने अबू सुफियान को और हजरत अबू तालिब की शख्सियतों को। आप कहते हैं अबू सुफियान मुसलमान हो गया और हजरत अबू तालिब के ईमान पर शक करते हो। देखो उन्होंने इस्लाम को क्या दिया, अबू सुफियान ने इस्लाम को दो बच्चे दिए, एक का नाम मुआविया, दूसरे का नाम यजीद। एक ने इस्लाम और दीन का बेड़ा गर्क कर दिया, दूसरे इंसानियत का बेड़ा गर्क कर दिया। और हजरत अबू तालिब ने दो बच्चे इस्लाम को दिए, एक का नाम मोहम्मद है और एक का नाम अली। हमने क्या दिया है? आयतुल्लाह जवाद अमली फरमाते हैं, हमेशा हम ये कहते हैं कि इस्लाम ने हमको क्या दिया, हम हमेशा लेना जानते हैं। वो जुमला यहीं पर रुक कर कहते हैं, हमेशा हम लेने के लिए तैयार होते हैं, इस्लाम ने हमको क्या दिया, इनकलाब ने हमें क्या दिया। लेकिन कभी ये सोचो, तुमने इस्लाम को क्या दिया है, तुमने इनकलाब को क्या दिया है? इस्लाम को और इनकलाब को जो हज़रत अबू तालिब ने दिए, दो बच्चे दिए हैं, एक मोहम्मद फला और एक अली जो बेटा है। और आज भी 1400 साल गुजरने के बाद भी पर्दा गैब में एक हज़रत अबू तालिब का बेटा है जो फ़ख्र से कह रहा है कि मेरी रगों में हज़रत अबू तालिब का खून है। इसलिए हजरत अबू तालिब को कहते हैं अबुल आइम्मा, इमामों के बाप, 12 इमामों के बाप को कहते हैं हजरत अबू तालिब। जिसको शख्सियत समझ में नहीं आती वो इनकार करने लगता है। ऐसी शख्सियत इस दुनिया से गुजरी आज की तारीख में, अगरचे मैंने नहीं देखा तारीख में रमजान का तस्किरा हो हजरत अबू तालिब की वफात में, या शव्वाल है या माह ज़िलक़ादतुल हराम है, बहरहाल मंसूख कर दिया गया दिन तो मैं तस्किरा कर रहा हूँ, उसके तारीख पर भी गौर करना चाहिए कि कौन सी तारीख है। शव्वाल का तस्किरा है और माह शव्वाल का और माह ज़िलक़ादतुल हराम का मैंने रमज़ान का नहीं देखा, इंशाल्लाह अभी मुताले में हूँ, अगर कहीं नज़र आ जाता है तो इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। तो ये तारीख मंसूब की गई हज़रत अबू तालिब से, ये शख्सियत गुजरने के बाद मौला कायनात के आँखों में आंसू आए। सबसे पहले पैगम्बर इस्लाम को हज़रत अबू तालिब की मौत इर्तिहाल की खबर देने वाले मौलाए कायनात हैं कि या रसूल अल्लाह मेरा शफीक बाप इस दुनिया से चला गया, शफीक बाप दुनिया से चला गया, आसरा एक नूरानी शख्सियत हमारे दरमियान से उठ गई। पैगंबर इस्लाम की आंखों से आंसू जारी हुए, सरहाने आए, अबू तालिब के बैठे, बच्चों को तसल्ली दी, मौलाए कायनात को सीने से लगाया और बड़े एहतमाम के साथ अबू तालिब का जनाजा उठाया गया। जिसके चाहने वाले, जिसके बच्चे आज़ाद होते हैं, असीर नहीं होते, हाथों में हथकड़ियाँ नहीं होती, पैरों में बेड़ियाँ नहीं होती, गले में खारदार ताक नहीं होते, इस तरह वो दूसरों के बच्चों को तसल्ली देते हैं और उनका जनाजा बड़ा एहतमाम के साथ उठाया जाता है। लेकिन मैं कहूँगा मौला, ये 10 हिजरी 10 बेसत की तारीख है, मक्का मुकर्रमा में है और यहाँ पर कोई दुश्मन आपको सताने वाला नहीं। आपने अपने बाप का जनाजा बड़े धूम से उठाया, आपका नाम अली है, आपने जनाजा धूम से उठाया। मौला एक और अली मुझे याद आ रहा है जो 11 मुहर्रम को दश्त करबला में खड़े आंखों से आंसू जारी होते चले जा रहे हैं, अपने बाप के लाशे को देख रहा है, चेहरा जर्द हो चुका है, कहता जा रहा है बाबा मुझे माफ करना, मेरे हाथ खुले होते तो मैं तुमको कफन देता, अरे बाबा मेरे हाथों में हथकड़ियां ना होती तो आपका जनाजा भी बड़े धूम से उठाया जाता, बाबा इस बच्चे को माफ करना। रिवायत ये कहती है कि हजरत ज़ैनब ने सज्जाद को देखा, चेहरा जर्द होता जा रहा है, अपने आप को ऊंट से गिराया, कोहनियों के बल चलती हुई हुसैन के करीब आई, अपने कोहनियों से लाशे हुसैन पर पड़े हुए पत्थरों को हटाया, हुसैन के बदन को देखा, आए फातिमा के लाल के तू ही हुसैन ए भैया जब तेरी आंख से आंसू निकलता था तो माँ तड़प जाती थी, इस गर्दन से खून जारी है। ज़ैनब कुबरा ने सलाम किया, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह हुसैन इब्न अली मुक़त्तउल आज़ा मुरम्मलुन बिद्दमा, नाना रसूल आइए ये कर्बला में उस हुसैन को देखिए जिसके आज़ा कटे हुए हुए, बदन खून से भरा हुआ है, उठी करीब गई, सैयद सज्जाद को झिझोड़ा, बेटा ये क्या कर रहे हो? तो एक ही जुमला सैयद सज्जाद ने कहा, पुपी अम्मा जवान बेटा जिंदा है, बाप का लाशा बेगो। على لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ایک سلام کریں کربلا کا رخ کر کے، السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الآخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.